हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6। कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करिए, ताकि हम जो अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरतश् जातिष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुहुयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकर्तवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विध्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिध्यवरुध्यतेऽत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथम तीन श्लोकों में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण का मंगलाचरण करते हुए अपने इष्ट को प्रणाम किया, श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तु का वर्णन किया और उसके बाद निमंत्रण दिया कि आप आओ, क्योंकि आप रसिक हो, तो आपको यदि रस की इच्छा है तो वो सब का सब रस जो है वो श्रीमद् भागवतम में स्थापित किया गया है, तो आओ और इसको पियो। उसके बाद वेद व्यास जी ने कथा का आरंभ करते हुए श्लोक नंबर 4 में बताया, निमिष निमिष क्षेत्रे विषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कि एक बार नैमिषारण्य वन में पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। जब वो यज्ञ करते थे तो अलग अलग ऋषि वहां पर आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, श्लोक नंबर 5 में उन्होंने बताया, एकदा तु मुनयः प्रातर हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातः कालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। अब प्रश्न पूछना शुरू किए उन्होंने ऋषियों ने, किससे, सूत गोस्वामी से, जिनका नाम वास्तव में उग्र श्रवा जी था। और वो किन के पुत्र थे, रोम हर्षण जी के पुत्र थे। और भगवान बलदेव ने सूत गोस्वामी को संचार शक्ति का बल प्रदान किया था। आप सब सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, जिनको स्वयं साक्षात भगवान बलदेव यानी जो आदि गुरु हैं शंकरशन जी, जिनको उन्होंने संचार शक्ति या प्रचार शक्ति का बल दिया हो, उनके अंदर कितना आध्यात्मिक ज्ञान होगा। ये सूत गोस्वामी जो थे, ये भगवान बलदेव जी का कृपा प्रसाद है हमारे लिए। भगवान बलदेव ने हम जैसे मूर्ख लोगों को प्रचार करने का उन्हें बल प्रदान किया। और उनके रोम हर्षण जी का वध बलदेव जी के हाथों हुआ, क्योंकि वो प्रचार करते थे, लेकिन प्रचारक के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रचार जो करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा विनीत रहना चाहिए। जो भी सिंसियर मतलब सीनियर डिवोटीज हैं, उनका हमेशा आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। और इवन जो हमारे सीनियर डिवोटी हैं, उनके सामने तो प्रचार भी नहीं करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए ना। हम तो तब बोल सकते हैं जब हमारे सामने कोई सीनियर ना हो। तो अब वो प्रचार करते थे, लेकिन बलदेव जी जब वहां पर पधारे तो वो उसी में व्यस्त थे। तो बताना चाहते थे बलदेव जी कि अगर आप किसी अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप क्या सिखाओगे अपने श्रोताओं को। यदि आप ये चीज विनीत भाव भी नहीं सिखा सकते, यदि आप नम्रता नहीं सिखा सकते, यदि आप श्रेष्ठ वैष्णवों का सम्मान कैसे किया जाता है ये नहीं सिखा सकते, तो क्या सिखाओगे आप अपने श्रोतागणों को। तो भले ये सारा शास्त्र ज्ञान जो है ना, वो खाली पढ़ने का नहीं है, इसके बाद यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं आती है, यदि विनीत भाव नहीं आती, यदि विनम्रता हम अपने अंदर नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो यह सारा का सारा सब विफल है, कुछ भी फायदा नहीं है। श्रील भक्तिपाद जी कहते हैं, गौलोक वृंदावन धाम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास दान करने के लिए धन नहीं होता था। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो तपस्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी शारीरिक कंडीशन ऐसी थी कि वो बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ के लिए उनको सही सामग्री प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। लेकिन वहां पर गौलोक वृंदावन धाम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर विनम्रता ना हो। तो ये तो बलदेव जी या फिर राम हर्षण जी के साथ उनकी लीला है, यानी कि ये हमें इन शुद्ध वैष्णवों के जरिए जो भगवान लीलाएं करते हैं उनसे हमें कुछ सिखाते हैं, हमें एक सबक देते हैं कि यदि आप कितने भी महान हो जाओ और आपके अंदर विनम्रता नहीं है, तो फिर सब आपका ज्ञान जो है वो किसी फायदे का नहीं है, किसी लाभ का नहीं है, इससे बेहतर मर जाओ। अगर आपके अंदर इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब सीखने के बाद भी, यदि इतनी साधना करने के बाद भी आपके अंदर विनम्रता नहीं आई है, तो फिर फायदा ही नहीं है सब कुछ ग्रहण करने का। तो एक बार जब ये ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे, तो सूत गोस्वामी वहां पर पधारे और सारे ऋषियों ने बहुत ही सम्मान किया उनका, बहुत ही आदर के साथ उनको बड़े व्यास आसन पे बिठाया, उनको माला वाला पहनाई, बहुत ज्यादा उनका आदर किया। और उसके बाद क्या किया, पपच्छुरिदमादरात, और आदर के साथ उनका दोबारा से आदर करने के बाद उनसे इस तरह से प्रश्न पूछे। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने से पहले ये भागवत जो है ना, वो हमें हर चीज सिखाती है। वो बताती है कि प्रश्न पूछने से पहले जो सीनियर डिवोटीज होते हैं उनके साथ कैसे डायरेक्ट से प्रश्न पूछना चाहिए या कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो वो बताते हैं 3 श्लोकों में सूत गोस्वामी की प्रशंसा की। अभी प्रश्न पूछना है, देखो साधारणतया हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई महान संत हमारे सामने आते हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कि देखो क्वेश्चन पूछने से पहले पूरे तीन श्लोकों में इन्होंने सूत गोस्वामी की प्रशंसा की। तो पहला श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। देखो अब तक हम लोगों ने जो 5 श्लोक पढ़े ना, वो वेद व्यास जी ने कहे हैं। आज का जो पहला श्लोक, श्लोक नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, वो कौन कह रहे हैं, ऋषयः उचु। अब ऋषयः उचु लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी ऋषि वहां पर थे वो एक साथ बोलने शुरू हो गए, है ना। वहां पर 88,000 ऋषि मुनि थे और एक साथ बोलने शुरू हो गए। वहां से वो प्रशंसा कर रहा है, वहां से वो प्रशंसा कर रहा है। तो एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप वक्ता हो और कोई वक्ता हो और वहां पर जितने भी श्रोतागण है वो एक साथ यदि बात करेंगे तो वक्ता को तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, है ना। एक साथ जब कोई बात कर रहा है तो शुरू में ऐसा हुआ था, यानी कि अभी तक कोई डिसीजन लिया ही नहीं था, अचानक से सूत गोस्वामी आए। पहले तो यज्ञ हो रहा था ना, पहले तो किसी को ये थोड़ी खबर थी कि हम लोग ये करेंगे, उसके बाद यज्ञ बंद कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो अचानक से यज्ञ बंद हो गया और उनको व्यास आसन पे बिठाया गया, तो सारे ऋषिगण पहले उनकी प्रशंसा करने लगे। पहले तो उन सब ने एक साथ बोला, लेकिन बाद में हम भागवतम आगे जाएगा तो हम आगे क्या पढ़ेंगे कि उन्होंने, सारे ऋषियों ने एक डिसीजन लिया कि अब क्या सबके बिहाफ पर क्वेश्चन कौन करेंगे, शौनक जी। जैसे हमने पढ़ा ना शौनकादया, तो शौनक जी क्योंकि उन सब में श्रेष्ठ थे। हमेशा जब हम बैठे होते हैं तो सीनियर को हम, है ना, अपनी बात बताते हैं तो फिर वो आगे करता है, पास करता है, क्योंकि सीनियर डिवोटी होता है, उसको बोलने का तरीका, वो उसको पता होता है कि मुझे किस तरह से बात करनी है, या वो सही तरह से समझा सकता है अपना जो वो होते बात होती है। तो उन सब ऋषियों ने शौनक जी को प्रधान अपना बनाया और जो भी क्वेश्चन होता था शौनक जी को बोलते थे, और शौनक जी जो थे वो सूत गोस्वामी को बोलते थे। अभी तो ये है सीन कि सारे ऋषि एक साथ बोले और क्या बोले हैं, हम कृपया आप सब मेरे साथ साथ इस पवित्र शब्दों को दोहराने का प्रयास कीजिए। ऋषयः उचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानक आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि 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 चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। शब्दों का अर्थ देखिए। ऋषयः उचु, ऋषयः अर्थात ऋषियों ने उचु अर्थात कहा, क्या कहा, त्वया यानी आपको, खलु यानी निश्चय ही, पुराणानि यानी उपवेदों को जिनमें रोचक कथाएं हैं, स इतिहासानि यानी इतिहासों समेत, च तथा अनघ पापों से मुक्त, आख्यातानि यानी कहा गया है, अपि यानी यद्यपि, अधीतानि सुपठित, धर्मशास्त्राणि यानी प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देशक होने वाले शास्त्र ग्रंथ, यानी ये सब उत आख्यात की गई। अब यहाँ पर ऋषि लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले संबोधन देते हैं, जैसे हम भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं प्रभु जी या हरे कृष्ण प्रभु जी, इस तरह उसको बुलाते हैं, प्रभु जी बोलते हैं या माता जी बोलते हैं या उनको संबोधन जो देना होता है कोई, वो देते हैं ना, तो उनके हिसाब से संबोधन दिया है। अब यहाँ पर कितना सीक्रेट और कितना पाप रहित संबोधन दिया है, कितना मतलब उनसे पूछने से पहले उनको ये बता रहे हैं कि आप से पूछ रहे हैं क्योंकि आप अनघ हो। यहाँ पर लिखा है ना चानघ, अनघ का मतलब होता है पापों से मुक्त, यानी आप निरपराध हो। आप जब हमें बताओगे तो हमारे अंदर वो जो भी आप हमें करने के लिए आज्ञा दोगे या जो भी आप उपदेश दोगे तो वो ऑटोमेटिकली हम ग्रहण कर सकेंगे क्योंकि आप अपराध रहित हो, आप अपराध नहीं करते हो, इसलिए आपका जो वचन है, आपकी जो बात है वो हम पर असर करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग कितना श्रवण करते हैं, हाँ बहुत सारे श्रवण करके आते हैं, लेकिन हमारे अंदर हृदय परिवर्तन नहीं होता है, हमारे अवगुण का नाश नहीं होता है, हृदय के जो दोष हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो खत्म नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या जानते हो, इसकी वजह है कि वक्ता जो है वो मेरे जैसे खल होते हैं, वक्ता जो है वो अपराधी होते हैं, वक्ता जो है वो स्वयं पालन नहीं करते अपने आदेशों का, तो उसकी वजह से श्रोताओं को उसका असर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो वक्ता है, ये जो शास्त्र है ना, वो निष्पाप है, उसके अंदर कोई अपराध नहीं है, उसके अंदर कोई कैतव नहीं है। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि जिस प्रकार अगर दूध को भी सर्प ढंक देता है तो वो दूध भी जहर बन जाता है, इसी तरह आजकल बहुत सारे वक्ता ऐसे हैं जो मायावादी हैं, जो भगवान को जानते ही नहीं है, जो भगवान के शरीर को भी माया का शरीर समझते हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, जो भगवान को निराकार समझते हैं। तो इस तरह जो लोग भगवान की व्याख्या गलत करते हैं, जो शास्त्र की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से, वेद व्यास जी ने अपने इतने सारे शास्त्रों में, हजारों शास्त्रों में एक दफा भी नहीं कहा कि भगवान निराकार है, लेकिन क्योंकि अपनी मनमानी व्याख्याएं डालते हैं, अपराध करते हैं और वैष्णव अपराध करते हैं, बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो कि अनघ नहीं है, इसकी वजह से जो है वो सही प्रचार का असर नहीं होता, और हमें बताएंगे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कि कौन से एटलीस्ट वक्ता को चार अपराधों से मुक्त होना चाहिए, चार अपराध जो जिनको मुख्य अपराध कहा जाता है। सबसे पहले क्या है? मांस आहार। एक वक्ता जो मांस खाता है वो कभी ऐसा प्रवचन कर ही नहीं सकता जो आप पर असर करे, उसके मुख से तो सुनना ही नहीं चाहिए। जो मांस आहार करता है वो इस योग्य ही नहीं है कि उसकी बात सुनी जाए, चाहे वो कितनी ही सुंदर बात क्यों ना कर रहा हो। सबसे पहले जो तशुवत करते हैं यानी मांस आहार करते हैं, दूसरा जो नशा करता है, जो शराब का सेवन करता है या कोई भी नशा करता है, वो यदि आपको कोई भी, या तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मांस खाली खाते नहीं है बल्कि ऐसा जो कथा के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको प्रसाद के नाम पे, हमारे यहाँ पर तो ऐसे भी वक्ता हैं जो प्रसाद के नाम पर मांस को वितरित करते हैं, तो वो क्या क्या उपदेश करेंगे जो इतना अपराध कर रहे हैं, और क्या असर होगा हम सब पर उसके उपदेश का? कोई असर नहीं होता, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, कोई भगवान से प्रेम नहीं होता। तो ऐसे जो नशा करते हैं वो भले कितना ही शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, अच्छा हमारे में पता है ब्राह्मण भी सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर नाम निहार होते हैं, ये सब शास्त्र कहता है कि आप तभी भक्त कहलाने के योग्य हो जब आपके अंदर एक लिस्ट ये चार अपराध ना हो। नशा नहीं करना चाहिए, जो नशा करता है उसका उपदेश कभी भी आपको असर नहीं कर सकता, ग्राह्य नहीं होता। जो अवैध संबंध करता है यानी अवैध स्त्री के साथ या अवैध पुरुष के साथ जो व्यक्ति संबंध करता है, वो कभी भी आपको सही उपदेश नहीं दे सकता। यदि सही उपदेश, सही शास्त्र भी आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता है तो आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। और जो जुआ खेलते हैं, तो ये चार जो कि धर्म के स्तंभ हैं, वो जो स्वयं धर्म के अंदर खड़ा नहीं हुआ, जिसका अपना धर्म का जो क्षेत्र है वो टूटा हुआ है, धर्म के सारे पिलर्स गिरे हुए हैं, तो वो उसके अंदर ना दया होगी क्योंकि वो मांस आहार करता है, ना पवित्रता होगी क्योंकि वो अवैध संग करता है, ना तपस्या होगी क्योंकि वो नशा करता है, और ना सत्य बोलेगा क्योंकि वो द्युत कीड़ा में लगा रहता है, और सत्य नहीं, और जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज नहीं होती। और शास्त्र तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, वक्ता यदि बनना है, यदि आप ये समझते हो कि मैं भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का या भगवान की कथाओं का प्रचार करूं, तो आपको खाली ये चार चीजें नहीं त्यागनी है, और भी बहुत सारे वेग हैं जिनको कंट्रोल करना है। शिला रूप गोस्वामी उपदेश अमृत श्लोक नंबर 1 में बताते हैं वक्ता की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेतदीरः पृथ्वीम सशेष्यात्। सबसे पहले तो वाचो वेग, अपने बोलने की इंद्रिय के को कंट्रोल करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मौनी बाबा बन जाए, बात ही नहीं करें, बात करें तो केवल कृष्ण के विषय में, और इसी को कहते हैं बात करने की कंट्रोल। वाचो वेगम इसी को बोलते हैं कि जब आप बात करो तो केवल भगवान के विषय में, शास्त्र के विषय में करो। मन वेगम, मन का वेग क्या होता है? मन जो भौतिक चीजों की इच्छा करता है उसके इस जोर को रोकना। क्रोध वेगम, जो भौतिक चीजों के ना मिलने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको रोकना। और क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, यानी जिह्वा जो हर वक्त कुछ न कुछ खाने के लिए ललचती रहती है, हर वक्त चाहिए होता है ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं इधर से ये खाना है वो खाना, जिह्वा के वेग को। और उदरोपस्थ वेगम, उदर यानी पेट और जनन इंद्रिय के वेग को जो रोक सकता है। सर्वम अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्, वही इस योग्य है कि वो मतलब प्रचार कर सकता है, शिष्य बना सकता है। तो एक साधारण व्यक्ति जो है जिसके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, वो यदि हमें प्रचार करता है या कुछ बताता है तो वो कभी भी हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। इसी यहाँ पर सब सूत्र गोस्वामी को कहते हैं कि आप जब बोलोगे आप जब प्रवचन करोगे तो वो हमारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि आप निरपराध हैं। और आगे बताया कि आपने आपसे हम इसलिए नहीं पूछ रहे कि खाली आप निरपराध हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है। अब यहाँ पर खाली एक निरपराध हो अगर और वो आके बैठ जाए, वो प्रचार नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं हो, है ना। ज्ञान होना भी जरूरी है। आप एक तो अनग हो और दूसरा सब कुछ जानते हो। क्या जानते हो? पुराणानी, यानी जो बहुत सारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ आगे बताएंगे, जितने भी पुराण हैं और से इतिहासानी, जितने भी इतिहास है यानी रामायण महाभारत और जितने भी इतिहास है उन सबको जानते हो। जितने 18 पुराण है उन सब के ज्ञान को, ज्ञान के बारे में आप जानते हो, वो सब आप जानते हो, तो आप जो भी बोलोगे वो क्या होगा? एकदम ऑथेंटिक होगा। और आख्यातान्यक्त्य दीतानी, अब यहाँ पर ये बताया कि ना केवल आप जानते हो, आख्यातानी का मतलब है आपने बहुत बार उसके ऊपर प्रचार किया है, एक एक श्लोक को इतनी दफा तो सबको बताया है, तो आप क्योंकि प्रचारिक हो आपको सब कुछ पता है, इतिहास भी जानते हो पुराण भी जानते हो। और आख्यातानी, वास्तव में भक्तों जब एक चीज हम पढ़ लेते हैं ना वो हमें इतनी अच्छी तरह से याद नहीं आती जब हम उसको एक दफा या दो दफा जितना हम उसको प्रचार करते जाते हैं ना, जितना हम उसको दूसरों को डिस्क्राइब करते जाते हैं बताते जाते हैं तो और भी हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि आपने बहुत दफा इस सब चीजों का, पुराणों का, इतिहासों का प्रचार किया है, इसलिए आप परफेक्टली जान गए हो। आख्यातान्यप्यधीतानि, दीतानि का क्या मतलब होता है? वैसे दीतानि का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी वैसे तो कुछ लोग समझते हैं इसको पढ़ना, अध्ययन करना, हम बोलते हैं ना हम जो अध्ययन करने वाले, हम जो पढ़ने वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को भली भांति पढ़ना, यानी बार बार पढ़ना, तब तक पढ़ना जब तक वो रट न जाए, तब तक पढ़ना जब तक वो हृदय गम्य न हो जाए, तब तक पढ़ना जब तक कि वो याद न हो जाए। तो आपको हर चीज याद है, जितने भी पुराण, हमारी तरह ऐसे नहीं हम पढ़ते ना, जैसे किधर जाते तो एक किताब पढ़नी होती है या शास्त्र जो भी पढ़ना होता है, आज मुझे भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ना है, पढ़ लिया, बाद में अगर पूछे आज श्लोक में क्या था तो माइंड में ये भी नहीं आता श्लोक नंबर कौन सा था, तो ये वाला पढ़ना नहीं। यहाँ पर बताया अधीतानी, यानी कि बहुत ही आपने गौर से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अध्ययन किया है, हृदय गम्य किया है, तो सारे शास्त्र, सारे इतिहास पुराण आपको सब याद है। और आगे धर्म शास्त्राणी, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको, और ज्ञान युत, उनकी आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया है सबको, उन सब के बारे में आपने बहुत अच्छी व्याख्याएं की हैं, तो वो सारे धर्म शास्त्र, यानी यहाँ पर बता रहे हैं एक तो आप चाणक हो, आपके अंदर कोई अपराध नहीं है, आपने आप पाप रहित हो, और दूसरा वेद शास्त्र इतिहास पुराण धर्म ग्रंथ सबको बारंबार पढ़ा है, और ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि वो तो आपके हृदय में सब स्थापित हो गए हैं क्योंकि आपने कई बार इसका प्रचार भी किया है। तो ऐसे सूत गोस्वामी के साथ उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है जिसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होंगी वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो वो कितना पावरफुल होगा, कितना असर करेगा। अनुवाद देखिए, मुनियों ने कहा हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं, आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देश में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्याएं भी की हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी चाणक्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कलयुग के चार प्रमुख पाप हैं। नंबर एक, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना। नंबर दो, पशुवध। नंबर तीन, मादक द्रव्य सेवन। तथा नंबर चार, सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो निष्कलंक चरित्र वाला हो और उपर्युक्त पापों से रहित ना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो निष्कलंक चरित्र वाला ना हो, यानी जिसका चरित्र ठीक ना हो और उपर्युक्त पापों से रहित ना हो, यानी जो चार पाप पता है उनसे रहित ना हो, वो सब करता हो, उसे व्यास आसन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बैठाना उन पर नहीं। और आज हम देखते हैं ऐसे ही लोग प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोग जो प्रचार करते हैं, ना ही वो व्यास आसन होता है और ना ही वो वेद व्यास की भाष्य बोल सकते हैं। उनके अंदर तो इतना दम ही नहीं होता है कि वो सच्ची बात बता सके। तो उसे ना केवल इन सब पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस खाली निष्पाप हो जाए और पढ़े लिखे कुछ नहीं, उसको शास्त्र वास्त्र कुछ ज्ञान नहीं हो, शास्त्र का पता नहीं हो, गीता भागवतम। और आज के इस समाज में श्रील प्रभुपाद जी बता दें कि यदि सिर्फ दो शास्त्र भी आप पढ़ सकते हो, उसको समझा सकते हो, तो आप बैठ सकते हो शास्त्र। दो शास्त्र क्या? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम महापुराण। ये दो, क्योंकि वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है, ये सब ये ही सार है। तो यदि कोई इन दो को सही तरह से समझ सकता है और इनके निचोड़ को समझ सकता है, इनके श्लोकों को बता सकता है, इनके शब्दों का अर्थ कर सकता है, तो वही बैठ सकता है। उसको इतना दक्ष होना चाहिए, व्यास आसन पर बैठने का अधिकार उसे तब मिलता है जब वो ये सब कर सकता है, जब वो निष्कलंक हो और वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है, एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों का ही अंग है। आचार्य या गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या यानी कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि खाली उसने पढ़ा ही नहीं होना चाहिए, उसको उसका कीर्तन भी आना। यानी कीर्तन का मतलब होता है व्याख्या करना। देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ वर्ड लिखा है कि उन सबको उसने बहुत बड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ ना, आख्यातन्यप्यदीतानि, यानी कि जिसको हम बताएं, जब भगवान की लीलाओं को बताते हैं तो यानी कि भगवान के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो श्रवण, उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है रीड करने से। तो जो रीड करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको उन्हें विस्तार से बताना चाहिए दूसरों को। इससे क्या होता है, आपके हृदय गम्य हो जाता है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्री पप्पा जी बोलते हैं इससे आपके हृदय में वो बैठ जाता है, फिर आप उसके मर्म को समझ सकते हो और उस पर आचरण करने के लिए तैयार हो जाते हो। श्रवण तथा कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो उसके लिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। क्या? एक तो श्रवण करना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, भगवान के नाम रूप गुण आदि का कीर्तन करना और इन सबको श्रवण करना। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। अब बोल कौन सकता है या बोलने का अधिकार कौन किसको है? जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से, उपयुक्त स्रोत कौन से? जो कि परंपरा से आए हैं, उनसे, यानी कि क्रम से उन्होंने जब सुना है। अगर हम लोगों ने खुद भी सही तरह से अध्ययन किया नहीं है, जैसे शास्त्र को पढ़ा नहीं है, भगवद गीता के दो चार श्लोक आ गए और बस बैठ गए व्यास आसन पर, और अगर कोई क्वेश्चन भी करेगा तो बोलेंगे भाई ये तो श्लोक मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप एज इट इज कर सकते हो और अच्छे किसी विद्वान से आपने पढ़ा है तो फिर आप सही आंसर दे सकते हो, सही गाइडनेस दे सकते हो। तो अब जाहिर सी बात है, आप प्रचारक बन रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि आप है ना बैठ जाओ व्यास आसन पर और आपको खुद पता ही नहीं हो कि मैं किस श्लोक के बारे में। तो यहाँ पर लिखा उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करना। प्रचार करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप बहुत बहुत उसको श्रवण करो, क्योंकि श्रवण जो आपने किया है वही अगर परफेक्ट सोर्स से किया है तो फिर आप एज इट इज अच्छे तरीके से बता सकते हो। दिव्य ज्ञान को तभी बलिबांति समझा जा सकता है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हर लोग को प्रचार करने का बहुत शौक होता है कि हाँ हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। हमारे ग्रुप्स में भी कुछ कुछ लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि अब हम प्रचार करना चाहते हैं, और देखते मैं रोजाना लेक्चर का फ्लावर होता नहीं है उनका, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा भी नहीं सुनो भले आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन शास्त्र तो एटलीस्ट जिससे भी स्रोत से आप समझते हो कि उससे मुझे अच्छा समझ में आ रहा है या वो अच्छा ज्यादा तरीके से बता रहा है, तो आप उसको उससे सुन सकते हो। लेकिन बोलने से पहले एटलीस्ट आपको आना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि मुझे ये बताना है। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर बता कैसे सकेंगे। और दूसरा ये कि यदि आप आचरण हम नहीं करेंगे, हम अपराध युक्त जीवन गुजारेंगे, चार अपराध करेंगे या दूसरे भी अपराध, अलग अलग चीज़ों में भौतिक चीज़ों की वासनाएं अभी तक भरी हुई होंगी, तो वो कभी भी आप पे असर नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा जब भी संकोच होता है मुझे, जब भी मैं कहती हूँ ना कि मंगल आरती के टाइम पर आपको अपने अपना जप कंप्लीट करना, तो मुझे ऐसा लगता है ये असर कैसे करेगा, जबकि है ना मैं खुद भी ऐसा नहीं कर रही होती हूँ। लेकिन आज से प्रयत्न करेंगे, हम सब ने मिलकर ये निश्चय किया है कि अब हम सवेरे से जब अपना कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगी, इसी से हमारी आध्यात्मिक में उन्नति होगी। और अब हमने भगवद गीता पढ़ ली है, भागवतम स्टार्ट कर लिया है, अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए भक्ति के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।